मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 13 मई 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मनीषा भारद्वाज इंदौर मध्य प्रदेश से, ललित भारद्वाज आप भी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, और विनीता शर्मा अजमेर राजस्थान से। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं ईटीएफ पर कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। आइए पहले एक दो जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। इनफैक्ट सच पूछे तो रेडियो और चैनल्स पर तो अब ऐसी कोई न्यूज नहीं दिखाई दी जिसको लेकर के हम सिविल सर्विस के बारे में बात कर सकें, और आप अच्छे तरह से देख रहे हैं कि सारे मीडिया अभी चुनाव में हुए हैं और हो रखे हैं, कह लीजिए, ये हिंदी का सही शब्द नहीं है, हो रखे हैं, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि अक्सर इस तरह के वाक्य सुनने को मिल जाते हैं और स्वाभाविक भी है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव चल रहा है तो उसमें मीडिया का उसमें रंग जाना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर में हमें कुछ न कुछ इस तरह की अच्छी खबरें पढ़ने को मिलती रहती हैं जो सिविल सर्विस की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मैं आज एक खबर की आपको चर्चा करूंगा और उसमें खासकर इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल कमेंट भी उस पर लिखा गया है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बड़ा लंबा है इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा, और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर मुझे लगता है कि 2 साल पहले प्री में क्वेश्चन भी पूछे गए थे। यूएन का इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। दोस्तों, हिंदी में अनुवाद मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, शुरू यहां से होता है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। यानी कि देखिए, इंटर गवर्नमेंटल यानी कि इसमें कुछ देशों की सरकार शामिल है, एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है, राइट, जिसमें कुछ देश है, इंटर गवर्नमेंटल। तो ये मंच है किस तरीके का, बेसिकली ये साइंस पॉलिसी बताता है, मतलब बड़े वैज्ञानिक नीतियां बताता है किन चीजों के बारे में वैज्ञानिक नीतियां बनाता है, ऑन बायोडाइवर्सिटी जैव जो विविधता है उनके बारे में, और इकोसिस्टम यानी कि हमारे जो पूरा के पूरे जो पर्यावरण का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसके बारे में। आप सीधे सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं ये बेसिकली पर्यावरण की रक्षा के से जुड़ा हुआ एक संस्थान है, एक मंच है जो बहुराष्ट्रीय है, यानी कि यहां बहुत से देश के लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, और फिर अभी जो पर्यावरण का जो संकट खड़ा हो गया है दुनिया के सामने, उसके बारे में नीतियां बनाते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सर्वे रिपोर्ट देते हैं, सचेत करते हैं कि क्या क्या संकट पैदा होने को है, उससे रिलेटेड ये संस्थान है। संक्षिप्त में इसका नाम है IPBES। ये 2012 में कुछ देशों ने मिलकर इसे बनाया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पर्यावरण के मामले में यह संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, याद रखिए, पर्यावरण के मामले में। तो इसलिए पर्यावरण से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट अगर यह संस्थान देती है तो आप उसे थोड़ी गंभीरता से लें। एक अभी खासकर इसकी एक रिपोर्ट आई है मित्र, जिसकी वजह से इस पर इकोनॉमिक टाइम्स ने एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है, और उसमें उसने सचेत किया है कि जो पर्यावरण है वो बहुत बुरी तरह से नष्ट हो रहा है। और सच बात यह है कि इसमें इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो वही पॉइंट्स हैं जो लगभग आप किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं। क्यों पर्यावरण नष्ट हो रहा है, आप देखिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उनके लिए भोजन की जरूरत बढ़ रही है, उनके लिए रहने की का स्थान चाहिए, तो जो लैंड यूज है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। इसमें इन्होंने एक और भी शब्द दिया, ओवर फिशिंग, उसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से पर्यावरण पर लगातार दबाव पड़ रहा है, और उसने उसमें वार्निंग दी है कि अगर स्थितियां ऐसी ही बनी रहीं तो आपको मालूम होगा यूएनओ का एक 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है, 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मुझे लग रहा है कि कुछ महीने पहले मैंने इस पर आप लोगों से बात की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर आपने नहीं सुना हो तो इसे जरूर पढ़िए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लक्ष्य को वो हासिल नहीं कर पाएंगे। मित्रों, इस इकोनॉमिक टाइम्स का जो एडिटोरियल कमेंट है, ध्यान से आप इसे पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यह बहुत सरल ही है, लेकिन स्पेशली जो मेरा पर्पस था आपको इस संस्था से अवगत कराना था। आज आपको करंट कंटेंट के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, नगर विकास योजनाएं कितनी सार्थक। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ आर्टिकल था जो हिंदी में आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए, ये नगर योजनाएं आपके सिविल सर्विस मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए तो इस पर क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। अब देखिए, नगर नियोजन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसके बेसिक्स की तैयारी आपकी हो जाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे जो अर्बन एरियाज को जब हम मैनेज करते हैं। तो अब उसके लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसकी समीक्षा आप कैसे करेंगे। ठीक है, योजनाएं बन गई, आपने पढ़ लिया, लेकिन जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं आपसे समीक्षा की मांग करते हैं। तो दोस्तों, यह आर्टिकल आपको एक समीक्षात्मक दृष्टि देगा कि जो भी प्लानिंग पॉलिसीज खासकर अर्बन डेवलपमेंट के लिए आ रही है उनकी क्या स्थितियां हैं, उनमें किस तरह के परिवर्तन किए जाने चाहिए। और सिविल सर्विस की तैयारी का देखिए, एक सही तैयारी का तो मुझे लगता है कि यही तरीका होता है कि आप लगातार जो नई नई चीजें आ रही हैं उन्हें ध्यान में रखें, उनसे जोड़कर अपने टॉपिक को लगातार अपडेट करते जाएं। दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पर, और वह है ईटीएफ। ये इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। यहां मैं आपको एक बात के प्रति सतर्क करना चाहूंगा। मान लीजिए कि अभी 2 जून को एग्जाम हो रहा है, हालांकि उसमें संभावना नहीं है क्योंकि यह शब्द अभी अभी थोड़ा सा प्रचलित हुआ है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। उसमें ईटीएफ के बारे में कुछ पूछ लिया गया, राइट, कि यह क्या है। चलिए, आपने उत्तर लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब जब 2021 का जब एग्जाम होगा तो अब जब आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे वो 2019 का, तो उसमें आपको ईटीएफ मिलेगा, तो क्या यह 2021 के लिए भी उतना ही रेलिवेंट है। यहां आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजी होती हैं इकोनॉमिक्स के बारे में जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप सारे टर्मिनोलॉजी पर तैयारी करने बैठेंगे तो पता लगेगा कि पूरा का पूरा ग्रंथ तैयार हो गया है। तो अब आपकी व्यावहारिक नीति क्या होनी चाहिए? आपकी व्यावहारिक नीति यह होनी चाहिए कि जो पिछले 1.5 साल के आसपास कह लीजिए जो टर्मिनोलॉजी चर्चा में आई है आप केवल उनकी तैयारी करें, बाकी को छोड़ दें। हां, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, उसके बेसिक्स को जानने के लिए जो टर्मिनोलॉजी जरूरी है वो तो आपको जानने ही है, लेकिन जब हम ईटीएफ जैसे शब्द देखते हैं तो ये अभी प्रासंगिक है तो केवल अभी के लिए है, ये कंटेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन एक बार जब कोई चीज बहुत चर्चा में आ जाती है तो आगे चल करके पता लगा कि वो आपके सिलेबस का ही हिस्सा बन गई है। तो देखिए, यहां ईटीएफ इसके बारे में कुछ समय से चर्चा थी और 1-2 दिन के अखबार में बहुत ज्यादा इस पर बातें हो रही हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात की जानी चाहिए। ईटीएफ, ई का मतलब एक्सचेंज, टी का मतलब है ट्रेडेड, और एफ का मतलब है फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए, यहां एक्सचेंज कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट से संबंध है ना, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली सी नहीं है, शब्द है यहां स्टॉक मार्केट। फिर दिया है ट्रेडेड, ट्रेडेड का मतलब है कि जिसका लेन देन किया जा सके, और क्या दिया हुआ है, फंड, यानी कि एक ऐसा फंड जिसका लेन देन स्टॉक मार्केट की तरह किया जा सके, शेयर की तरह किया जा सके, यानी कि फंड को ही शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सके, जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं, राइट। अब आप देखें कि ईटीएफ क्या है। आपने म्यूचुअल फंड का नाम जरूर सुना होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है, एक फंड है जो लोगों ने म्यूचुअल तरीके से तैयार किया, जैसे एक कंपनी है और उस कंपनी ने कहा कि हम म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो वो क्या करेगी, आपसे फंड लेगी, मुझसे फंड लेगी, कई लोगों से फंड लेगी, पैसा लेगी, तो म्यूचुअल फंड हो गया, कई लोगों ने मिलकर के एक कोष तैयार कर दिया। अब हम लोगों के बिहाफ पर ये जो कंपनी है ये शेयर मार्केट से शेयर खरीदेगी बेचेगी, ठीक है। फिर हमने पैसा लगाया है तो उसको जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को फिर हमारे लगाए हुए पैसे के अनुपात में हमें दे देगी। ये हो गया म्यूचुअल फंड, राइट। तो म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा लेती है और शेयर मार्केट से जो भी शेयर उसको ठीक लगते हैं कि इसको खरीदने से फायदा होगा उसको खरीद लेती है, तो अब इसको बेच देना चाहिए उसको बेच देती है, मतलब हमारे बिहाफ पर वो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। ETF इससे थोड़ा सा फर्क है वो एक तरह का म्यूचुअल ही फंड, लेकिन वो म्यूचुअल फंड नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड ही होता तो इसको हम म्यूचुअल फंड ही कह देते। चलिए मैं इसको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं आपको। आज के अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में पढ़ेंगे तो उसका फ्रंट पेज, उसका आइटम है ये, और पहला और बहुत विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि सरकार इस पर विचार कर रही है ETF पर, और तीन सेक्टर में वो ETF पर विचार कर रही है। बैंक, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जो सूचीबद्ध 19 बैंक है, एनर्जी, तेल और गैस की जो हमारी कंपनियां हैं, ये PSU के बारे में बता रहा हूं, पब्लिक सेक्टर यूनिट के बारे में बता रहा हूं, और मेटल धातु में कोयला है, खनिज है, खनन है, धातु है, इनसे रिलेटेड जो हमारी कंपनियां हैं, ठीक है। इनको मिला करके इस तरह की 22 कंपनियां उसने इकट्ठी की हैं। 22 कंपनी, याद रखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां हैं, 22 कंपनियां, और इन 22 कंपनियों को मिला करके एक फंड जैसा बनाया है जिसका नाम है ETF है, ये याद रखिए, भारत 22 ETF, इसका नाम है, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, भारत 22, यानी कि इसमें 22 कंपनियां हैं, ETF, ठीक है। तो अब क्या हो गया ये, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 22 कंपनियां जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट की हैं वो शामिल हैं, उनके शेयर्स इसमें शामिल हैं। तो अब जब आप इस ETF में पैसा लगाएंगे तो आपको ETF मिलेगा, किसी एक कंपनी के शेयर नहीं मिलेंगे। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड तो आपके बदले में पता नहीं किन किन कंपनियों के शेयर खरीदती है, लेकिन आपको जो शेयर मिलते हैं वो कंपनियों के शेयर थोड़ी मिलते हैं कि टाटा के मिल रहे हैं और आपको रिलायंस के मिल रहे हैं, आपको म्यूचुअल फंड के मिलते हैं कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है। तो यहां भी आपको ETF के शेयर मिलेंगे, यूनिट नहीं कहूंगा, ETF के आपको शेयर मिलेंगे। और अब जैसे ही इस इन ETF में जितनी भी कंपनी शामिल हैं उनको जब प्रॉफिट होगा नुकसान होगा उसके अनुसार आपके शेयर के रेट घटते बढ़ते रहेंगे और आप शेयर बेचेंगे तो उस हिसाब से आपको नफा और नुकसान होता रहेगा। पता नहीं मित्रों मेरी बात क्लियर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, मेरी कोशिश है कि सरल से सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अब आप देखिए कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आखिरी में हम केवल इसे और देख लेते हैं। आपको मालूम है कि जब सरकार किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो डिस इन्वेस्टमेंट करती है, अपनी कंपनियों के कुछ शेयर वो बेच देती है। तो ये जो सच, जब वो शेयर बेचती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसे खरीद लेती हैं। ETF में वो शेयर बेच तो रही है लेकिन ये पब्लिक के लिए जा रही है, पब्लिक के हाथों में जाएगा, कोई लोग छोटे छोटे यूनिट्स खरीदे, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे ETF में। तो यहां चूंकि थोड़ा थोड़ा पैसा पब्लिक लगाएगी, ज्यादा पैसा कोई एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं लगाएगा, तो ऐसे में सरकार को इस बात का खतरा नहीं रहता कि ये इंटरफेयर करेगा कंपनी में। भी पब्लिक को क्या है, किसी ने 2000 लगा दिए, 5000 लगा दिए, 10000 लगा दिए तो इंटरफेयर तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाता है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का हिस्सा भी बन जाता है, अगर उसने एक निश्चित परसेंटेज से ज्यादा पैसा लगाया है तो। ये सरकार को फायदा होगा और सरकार को बकायदे अपनी कंपनियों के लिए पब्लिक से पैसा मिल जाएगा। मित्रों ये ETF है जिसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, या आप इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि ये बेसिकली हाइब्रिड है, एक वर्ण शंकर है। किसका वर्ण शंकर है, एक तरफ शेयर मार्केट है, दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड है, उनके बीच की श्रेणी है। इन दोनों के चरित्र को मिला देंगे तो एक तरीके से, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो इनको मिला देंगे तो ETF तैयार हो जाएगा, राइट। दोस्तों तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम है, अनिशु राज देव, अनीता यादव, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, देवजीत सिंह और अभिलाषा शर्मा भोपाल से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।